آپ ہیں ایس بی ایس ہندی کے ساتھ اور خبروں کے لیے جائیں sbs.com.au/hindi پر۔
آسٹریلیا ایک ایسا دیش ہے جہاں پر بہت سارے سمودائے نہ صرف ایک ساتھ رہتے ہیں بلکہ مشکل وقت میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے بھی رہتے ہیں۔ بھارت میں اس وقت کورونا کی استھتی بہت گمبھیر بنی ہوئی ہے اور ایسے میں سڈنی میں ویسٹرن سڈنی آسٹریلیا کی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے کچھ انیشیٹو شروع کیا گیا ہے، ایک پہل شروع کی گئی ہے۔ اس وقت فون لائن پر ہمارے ساتھ ڈاکٹر انکور شری واستو موجود ہیں جو کہ ویسٹرن سڈنی ہیلتھ میں کام کرتے ہیں سائیکیٹرسٹ کے طور پر، تو ان سے ہی سمجھتے ہیں یہ پہل کیا ہے۔ ڈاکٹر انکور، آپ کا بہت بہت سواگت ہے ایس بی ایس ہندی میں۔
بہت بہت دھنیواد وکاس جی، بہت بہت دھنیواد مجھے بلانے کے لیے۔
سب سے پہلے ڈاکٹر انکور، آپ سے یہی سمجھنا چاہتے ہیں کہ یہ پہل کیا ہے۔
جی دیکھیے وکاس جی، یہ تو ہم سب جانتے ہیں آج کی ڈیٹ میں کہ اس وقت کیا چل رہا ہے ہندوستان میں بلکہ پورے وشو میں، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یہاں پر بہت بڑی جن سنکھیا آسٹریلیا میں، اسپیشلی سڈنی میں، انڈیا سے آئے ہوئے لوگوں کی ہے۔
بالکل۔
اور ہم بھلے ہی کافی سمے سے یہاں رہتے ہوں لیکن ایک ہر کسی کا کچھ نہ کچھ کنیکشن انڈیا سے ہے۔ ہمارے یا تو کوئی نہ کوئی پریوار کے لوگ، دوست، متر، کوئی نہ کوئی ضرور انڈیا میں ہے، اور اس وقت جو چل رہا ہے اس کا اثر ہم سب کی مانسک استھتی پہ پڑ رہا ہے۔ اس وقت بہت ضروری ہے کہ ہم بھارتیہ مول کے لوگوں کو کسی طرح کی ایموشنل سپورٹ دے پائیں، کیونکہ اکثر اتنی دور سے ہمیں سمجھ نہیں آتا ہے کہ ہم کیسے مدد کر سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں۔ تو بیسیکلی یہ پہل جو ویسٹرن سڈنی نے کی ہے، یہ ایک فون لائن کی ہم نے ویوستھا کی ہے، اور ہم نے اس پروگرام کو نام دیا ہے لیٹس ٹاک مینٹل ویلنس۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ ایسے ٹائم پہ ہم کوئی بھی نیگیٹو ٹرم کا استعمال نہ کریں اور النس کا نام نہ دیں۔
بہت صحیح۔
اس لیے ہم نے اس کو پازیٹیو رکھتے ہوئے لیٹس ٹاک مینٹل ویلنس کا نام دیا ہے کہ آئیے مانسک سواستھیہ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو یہ ایک طرح سے ہاٹ لائن اویلیبل ہے سوموار سے شکروار صبح 8:30 سے 5 تک، اور اس پر کوئی بھی کال کر سکتا ہے۔ بیسک فوکس جو ہے وہ ینگ لوگوں پہ ہیں، مینلی بچوں اور یواؤں پہ 25 کی عمر تک، لیکن ان سے ریلیٹڈ ان کے رشتہ دار، پریوار والے، یا اور ایون پریگننٹ عورتیں جن کو چنتا ہے اس بات کی کہ میرے بچہ جو ہے میرے پیٹ میں اس کو کیا ہوگا اگر کووڈ سے، یا میرے گھر میں کوئی پریوار جن بھارت میں ہیں جو پریگننٹ ہیں اور کووڈ کے بیچ رہ رہے ہیں، ان کا کیا ہوگا۔ اس طرح کے سبھی سوالوں کا ہم نے جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ تو اس کا جو نمبر ہے وہ نوٹ کر لیں، بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔
جی میں یہی پوچھنے والا تھا۔
جی جی، نمبر ہے جو سڈنی کا نمبر ہے وہ 02 ہے، شروع کا جو کوڈ لگتا ہے، اور اس کے بعد نمبر ہے 8890-6577۔
جی
8890-6577۔ سوموار سے شکروار صبح 8:30 سے شام کے 5 تک یہ سروس اویلیبل ہے۔
جی ڈاکٹر انکور، ایسے میں سوال یہ بنتا ہے کہ یہاں پر جو لوگ آپ سے بات کرتے ہیں وہ صرف بھارت کو لے کر بات کرتے ہیں یا آسٹریلیا کو لے کر بھی بات کرتے ہیں؟
دونوں طرح سے بات کرتے ہیں، آسٹریلیا کو لے کر بھی بات کرتے ہیں اور انڈیا کو لے کر بھی بات کرتے ہیں۔ کئی لوگوں کی چنتا ہے کہ یہاں پر بھی کووڈ بیچ بیچ میں آتا رہتا ہے، اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ابھی کچھ سمے پہلے بھارت کی استھتی کافی اچھی تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے کچھ ہفتوں میں کیسی استھتی ہو گئی ہے۔ تو کئی لوگوں میں اس طرح کی چنتائیں ہیں کہ یہاں پر بھی ہو سکتا ہے ایسا، اگر ہوگا تو ہم کیا کریں گے، کیسے رہیں گے۔ تو دونوں طرح کی چنتائیں ہیں، انڈیا کو لے کر بھی اور یہاں لوکلی بھی لے کر بھی۔
جی ڈاکٹر انکور، کورونا ایک ایسا سنکرمن ہے جس کے بارے میں پہلے نہیں پتا تھا، نہ صرف آسٹریلیا بلکہ پورے وشو کے لیے نیا ہے۔ تو ایک ڈاکٹر کے طور پر جب آپ پرامرش دیتے ہیں، کاؤنسلنگ دیتے ہیں، کتنا مشکل ہوتا ہے آپ کے لیے کسی کو کاؤنسل کرنا، کیونکہ ایک نئی طرح کی بیماری ہے اور اس سے جو لوگ جوجھ رہے ہیں مینٹلی ان پہ بھی اس کا بہت الگ طریقے سے اثر پڑ رہا ہے، تو ڈاکٹر کے طور پر کتنا چیلنجنگ ہے؟
جی بہت ہی اچھا آپ نے سوال پوچھا، اور بالکل صحیح کہا آپ نے، یہ بہت چیلنجنگ ہے کیونکہ جب ہمارے پاس آنکڑے نہیں ہوتے ہیں بتانے کے لیے، تو ری شور کرنے کے لیے ہمارے پاس زیادہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔ ہم آج کی ڈیٹ میں ہر دن کچھ نیا سیکھ رہے ہیں کرونا وائرس کے بارے میں، اور اس لیے جب کسی کو ہم کاؤنسل کرتے ہیں تو اس کو ایسے اوپنلی یوں ہی ری شور کرنا شاید صحیح نہیں ہوگا، और ना ही वो उनके लिए रिएश्योरिंग होता है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि हमें खुद भी हर दिन कुछ नया सीखने को मिल रहा है। तो बाकी काउंसलिंग से, कोरोना वायरस में काउंसलिंग हमारी डिफरेंट ऐसे होती है कि हम मरीज को सच ऑनेस्टली सब कुछ चीज़ें बताते हैं कि हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है, हम क्या जानते हैं आज की डेट में उसके बारे में। और कभी कभी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, सिर्फ जो इंसान इस चिंता से गुजर रहा है कि उसे एक बीमारी है या हो सकती है, उसकी आप चिंता को समझें और उसकी इस चिंता में उसका साथ दे सकें, कभी कभी वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो कभी कभी हमारी टेंडेंसी होती है हमें बोलने की, नहीं नहीं तुमको नहीं होगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। मगर इस तरह की बात, या तुम तो बहुत अभी यंग हो, तो तुम्हें अगर कोरोना वायरस हुआ भी तो कोई बात नहीं, तो इस तरह की बातें जनरली रिएश्योरिंग नहीं होती हैं। और बहुत ही ईमानदारी के साथ ये बात माननी, ये बात अपने अपने मरीजों के साथ, अपने पेशेंट्स के साथ साझी करनी कि हम समझते हैं कि हम बहुत कम जानते हैं, लेकिन काउंसलिंग में हमारा फोकस इस बात पर रहता है कि कैसे हम उनको सपोर्ट कर सकें, कैसे ये पहचान सकें कि उनमें कोई अर्ली सिम्टम्स जो हैं अवसाद या डिप्रेशन के तो नहीं आ रहे हैं, एंग्जाइटी के तो नहीं आ रहे हैं, कोई ऐसे सिम्टम्स तो नहीं आ रहे हैं जो डिस्प्रोपोर्शनेट हैं इस वक्त जो भी माहौल है हमारे देश में, यहाँ या भारत में। हर कोई जो है वो अलग तरह से किसी भी एक सिचुएशन को प्रोसेस करता है और हैंडल करता है। कुछ लोग काफ़ी बेटर तरीके से कर पाते हैं, कुछ लोग काफ़ी एंग्शियस और घबरा जाते हैं, कुछ लोगों की नींदें खराब हो जाती हैं। तो काउंसलिंग में हम इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि कहीं उनके मानसिक स्वास्थ्य पे इतना असर तो नहीं पड़ रहा है कि उन्हें किसी तरह के ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो, तो उसका भी हम ध्यान रखते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि वो अपने दिल की बात कह सकें और बोल सकें कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं। कई बार देखने में मिलता है कि परिवार वाले लोग जो हैं वो, या यहाँ पे जो लोग बैठे हैं उनका कोई बहुत ही परिवारजन वहाँ भारत में या तो बहुत बुरी तरह से बीमार है या फिर वो उसकी मृत्यु हो गई है, तो वो यहाँ पर एक चीज़ महसूस करते हैं जिसको हम सर्वाइवल गिल्ट कहते हैं, सर्वाइवर गिल्ट, कि उनको इस बात का अपराध बोध होता है कि मैं इतनी दूर हूँ, मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाया, मेरा मर जाना बेटर था, वो क्यों मर गए मेरी जगह, वो क्यों चले गए मेरी जगह। तो इस तरह की भावनाएं आनी बहुत कॉमन है, और काउंसलिंग में हमारा फोकस ये भी रहता है कि हम उनको ये बता सकें कि ये इस तरह की भावनाएं आपके जो मन में आ रही हैं ये नॉर्मल हैं, ये कॉमन हैं, ये वक्त के साथ धीरे धीरे निकल जाती हैं। हम उन्हें काउंसलिंग इस बात की भी देते हैं कि आप यहाँ पर जितना भी हो सके अपनी अपने सामाजिक चीज़ों को करते रहें, अकेले ना रहें, अकेले बैठकर सारा वक्त टीवी ना देखें या न्यूज़ ना देखें, कुछ पॉजिटिव चीज़ें करें, कुछ अच्छी चीज़ें करें, हंसी मजाक की बातें करें, एक दूसरे से बातें करें, और अगर बाहर जा सकते हैं तो बाहर जाएं, लोगों से मिलें। जी,
लेकिन भारतीय समुदाय में अब मेंटल हेल्थ को लेकर बात करना, परामर्श करना बहुत कॉमन नहीं है। ऐसे में आप इंडियन कम्युनिटी जो यहाँ पे रहती है या भारत में रहती है उसके लिए आप क्या एडवाइस देंगे?
बहुत अच्छा सवाल किया आपने विकास जी, और ये एक प्रॉब्लम जो है हमने बहुत देखी है हिंदुस्तान में। लोग बहुत देर से और बहुत कठिनाइयां आने के बाद सोच पाते हैं कि उनको शायद साइकाइट्रिस्ट से मिलना चाहिए। एक बहुत कॉमन जिसे हम स्टिग्मा कहते हैं वो लोगों के दिमाग में होता है कि अगर हम हेल्प मांगेंगे या हम साइकाइट्रिस्ट के पास जाएंगे तो लोग समझेंगे कि हम पागल हैं, या फिर हमारा चरित्र या हमारा कैरेक्टर स्ट्रांग नहीं है इसलिए हमें ज़रूरत पड़ेगी। मैं ये अपने अपने सभी साथियों से, भारतीय साथियों से जो यहाँ हैं और बाहर हैं, उनसे कहना चाहूँगा कि हमें ये समझना है कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी जैसी बीमारियाँ ये किसी और फिजिकल इलनेस या शारीरिक बीमारी से बहुत डिफरेंट नहीं है, और इसलिए हमें उनका उनके बारे में खुलकर बात करना चाहिए ताकि उनका ट्रीटमेंट हो सके। और सिर्फ ये सोचने से कि नहीं मैं अगर पॉजिटिव सोचूंगा, अगर मैं अपने आप को स्ट्रांग रखूंगा विलफुली तो मैं ठीक हो जाऊंगा, ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं है। हाँ, माइल्डर केसेस में और सिर्फ स्ट्रेस और चिंता के केसेस में जनरली लोग ठीक हो जाते हैं एक सपोर्ट से, लेकिन डिप्रेशन, एंग्जाइटी जैसी बीमारियों के लिए ट्रीटमेंट बना है और वो पूरी तरह से कारगर है। ये वैसे ही है जैसे कि आपको आपको चोट लगी है और आपको उसके लिए बैंडेड लगाना या उसके लिए ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है, वैसे ही दिमाग में किसी केमिकल्स की इम्बैलेंसेस की वजह से ये बीमारियां होती हैं और उनका ट्रीटमेंट जितनी जल्दी हो सके होना चाहिए।
जी, बस मेरा आखिरी सवाल, मैं जानता हूँ आपके पास समय बहुत कम है, अगर आप हमें बता पाएं कि लगभग कितने लोग आपसे बात करते हैं और कितने लोग हैं जो आपकी टीम में इस कॉल सेंटर से जुड़े हुए हैं?
जी देखिए, एक्चुअली हम हॉस्पिटल में काम करते हैं, वेस्टर्न सिडनी लोकल हेल्थ डिस्ट्रिक्ट में वेस्टमीड हॉस्पिटल में हमारा डिपार्टमेंट है जिसका नाम है पेरिनेटल चाइल्ड एंड यूथ मेंटल हेल्थ सर्विसेज। और ये हमारे क्लिनिशियंस हैं जो इस वक्त उसमें काम करते हैं। हमारे पास करीब 8 क्लिनिशियंस हैं और सभी क्लिनिशियंस जो हैं वो अलग अलग स्किल्स में डील करते हैं। जैसे कि हमारे पास कुछ साइकोलॉजिस्ट्स हैं, कुछ सोशल वर्कर्स हैं, कुछ ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट्स हैं, और अगर ज़रूरत पड़े तो हमारे पास डॉक्टर्स हैं जिनसे मरीज बात कर सकते हैं। तो हमारे पास 8 क्लिनिशियंस हैं जो अलग अलग स्किल सेट्स को डील करते हैं। देखिए, अभी हमने ये सर्विस शुरू ही की है, इसलिए हमारे पास अभी बहुत ज़्यादा फ़ोन नहीं आए हैं।
डॉक्टर अंकुर, आपने, मैं जानता हूँ इस वक्त आप बहुत बिजी हैं, ऐसे में आपने वक्त निकाला SBS हिंदी से बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हम आपकी इस पहल की बहुत सराहना करते हैं।
थैंक यू विकास जी, थैंक यू सो मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए, और मैं आशा करता हूँ कि हमारे भारत में स्थिति जल्दी ही सुधरे और हम सुबह का सूरज देखें।
लाइक करें, शेयर करें या कमेंट करें, SBS हिंदी को फेसबुक पर फॉलो करें।